We are thrilled to welcome you.
निश्चित है आपको आमंत्रित करने के लिए यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का एक महान जवान महिलाओं के सभा इस सुंदर शाम को. हम कॉन्फ्रेंस सेंटर जो सॉल्ट लेक सिटी यूटा में है में आज रात एकत्रित हुए हैं और विश्व भर में जवान महिलाओं उनके माताओं और उनके नेताओं के ऐसी सभाएं हो रही है. प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन जो इस सम्मेलन की नेतृत्व करता है ने कहा कि मैं संचालन करूं. मैं बहन इलेन एस डेल्टन हूं, जवान महिलाओं का महाअध्यक्ष. हम सम्मानित हुए हैं अपने प्रिय भविष्य वक्ता थॉमस प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन, उनके सलाहकारों प्रधान आयरिंग और प्रधान उगदोफ. हम एल्डर नील एल नेल्सन 12 के प्रसिद्धात के है भी स्वागत करते हैं. एल्डर ब्रूस सी हेफन और बिशप एच डेविड बर्टन की उपस्थिति से हम इन भाइयों को पुष्टि और सम्मान करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं. मंच पर बैठे हुए हैं मेरे सलाहकार जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, बहन मेरी एन कुक और एन एम डेव. हम प्रेम और कृतज्ञता से आभार प्रकट करते हैं सहायक संस्था के महाअध्यक्षता और प्राथमिक की महाअध्यक्षता को, साथ में जवान महिलाओं के जनरल बोर्ड के सदस्यों को भी जो हमारे समक्ष मौजूद है. हम अपनी शुभकामनाएं सभी को अर्पित करते हैं जो आज शाम उपस्थित है और उन सभी को जो अन्य सभाओं से भाग ले रहे हैं. इस सभा के संगीत एक जवान महिलाओं जो सोलह क्षेत्र के एक स्टेक से है द्वारा प्रदान किया जाएगा मेरली वेब के निर्देशन में. साथ में ओगन पर होगे लिंडा मार्गेस. गायक मेरली और सभा अब गाएगी हाई ऑन द माउंटेन टॉप. उसके बाद प्रार्थना एमली लेविस द्वारा बोला जाएगा जो सीडर हिल्स यूटा वेस्ट स्टेक की है.
Thank you. Our dear, kind, and gracious Heavenly Father, we're so grateful for this beautiful day that we have to come and gather as young women. We know who we are, Father, and we're so grateful for all the blessings that we have. Please bless President Monson and the other leaders of our church that they may be blessed, and bless all the speakers that they may say what they have prepared. Please bless those around the world that are in harm's way, that they may feel thy love for them. We're so grateful for all of our blessings, Father, and grateful for the atonement that Jesus Christ was able to do for us and his atoning love for us. We love thee so much. In the name of Jesus Christ, amen.
The choir will now favor
मंडली हमारे लिए संगीत विभाग से पेश करेंगे Guardians of Virtue. Jessica Hunt के साथ जो Pleasant Grove Utah Manila Steak में एक लॉरल है चेलो पर. गीत गायक के बाद बहन एनएम दीप जो जवान महिलाओं के अध्यक्षता में दूसरे सलाहकार है हमसे बातें करेंगी. उनके टिप्पणियों के बाद हम बहन मेरी एंड कुक से सुनेंगे जो जवान महिलाओं के महाअध्यक्ष में प्रथम सलाहकार है. हम इसके बाद एक छोटा वीडियो देखेंगे जिसमें विधवा भर की जवान महिला गवाही देंगी पवित्र प्यारी अच्छे रिपोर्ट की और बढ़ाई पर जरूरी खोज से.
My dear young women.
मेरे प्यारे जवान बहनों, मेरे लिए ये एक सौभाग्य और अनुकूल समय है आपके समक्ष खड़े होने का आज शाम को. तुम सब एक अद्भुत और प्रेरणा भरी दृश्य हो. 13 विश्वास के विषय 2011 म्यूचुअल का मूल विषय है. इस साल मैंने युवा के संगठन और प्रभुभोज सभाओं में भाग लिया है. मैंने सुना है जवान पुरुष और जवान महिलाओं को बयान करते हुए क्या ये 13 विश्वास का विषय का अर्थ है उनके लिए और कैसे उनको जीवन में लागू होता है. कई लोग इसे आखिरी विश्वास का विषय के रूप में जानते हैं, सबसे लंबा और याद करने में सबसे कठिन. फिर भी आप में से कई लोग ये भी समझते हैं कि 13 विश्वास का विषय उससे कहीं ज्यादा है. 13 विश्वास का विषय धार्मिक ईसाई जीवन का मार्गदर्शन है. अंदाजा लगाइए हमारे विश्वास कैसा होगा अगर सब लोग 13 विश्वास के विषय के सीख के अनुसार जीने का चुनाव करें. हम विश्वास करते हैं सच्चे होने में, विश्वासकारी सत्य, पवित्रता, दूसरों के लिए अच्छा कार्य करना, अच्छा जीवन बिताना और सभी मनुष्य के लिए अच्छाई करना, जिससे हम ऐलान कर सके कि हम पॉल के उपदेश को पालन करते हैं. हम सभी चीजों में विश्वास करते हैं. प्रधान थॉमस एस मॉन्सन के पहले रविवार सुबह के महासम्मेलन भाषण में उसने पॉल के उपदेश को फिलिपींस 4:8 में लिखा है को दोहराया, जिससे 13 विश्वास के विषय के कई सिद्धांत प्रेरित हुए हैं. प्रधान मॉन्सन ने चुनौतीपूर्ण समय के बारे में कहा जिसमें हम रह रहे हैं और प्रोत्साहन दिया. उसने कहा, मरणशील के इस कभी कभी खतरनाक सफर में हम शायद देवदूत पॉल के इस सलाह को मान ले जो हमें सुरक्षित और ठीक रहने में सहायता करेगा. आज रात में 2-7 जुड़े सिद्धांत पर गौर करने चाहती हूँ. 13 विश्वास के विषय में से जो हमें मदद करेगा सुरक्षित रहने और मार्ग पर टिके रहने के लिए. मेरे पास एक मजबूत गवाही और जिम्मेदारी है विश्वासकारी और सच्चा होने का. पहला, विश्वासकारी में होना विश्वास करती हूँ. विश्वासकारी होने का मतलब क्या है? वो पुस्तिका ट्रू टू द फेस सिखलाता है. विश्वासकारी होना के मतलब है ईमानदार, सच्चा और बिना कपट के सही सभी समय. परमेश्वर की ओर से एक आगे है विश्वासकारी होना और पूरी तरह से विश्वासकारी होना हमारे मुक्ति के लिए जरूरी है. प्रधान हावर्ड डब्ल्यू हंटर ने सिखलाया कि हमें पूरी तरह विश्वासकारी होना है. उसने कहा, कई वर्ष पहले जगह जगह पर हॉल्स और हमारे चैपल्स के पर प्रवेश में पोस्टर्स हुआ करते थे इस शिक्षक के, खुद से विश्वासकारी रहिए. कई पोस्टर्स इसमें जीवन की छोटी असाधारण बातों से जुड़ी थी. इन्हीं बातों से विश्वासकारी का सिद्धांत पैदा होती है. कुछ लोग स्वीकार करेंगे कि ये नैतिक रूप से ठीक नहीं कि बड़ी बातों में हम बेमान हो, पर विश्वास करते हैं कि अगर वो कम महत्वपूर्ण बात है तो माफ किया जा सकता है. क्या कोई अंतर है उस बेमानी जिसमें $1,000 हो जो और वो जिसमें सिर्फ 10 सेंट्स की बेमानी हो? क्या सच में बेमानी की दर्जे होते हैं उस पर आधारित कि विषय बड़ा या छोटा है? प्रधान हंटर ने कहा है, अगर प्रभु और पवित्र आत्मा के साथ हो, हम खुद के साथ विश्वासकारी होंगे, परमेश्वर के साथ और अपने साथियों के साथ. इससे हमें सच्चा आनंद मिलता है. जब हम सभी चीजों में विश्वासकारी होते हैं, बड़े और छोटे, हम मन की शांति और एक साफ अंतर आत्मा महसूस करते हैं. हमारे रिश्ते चाव होते क्योंकि वो भरोसा पर निर्धारित होता है. और सबसे महान आशीर्वाद जो विश्वासकारी होने से मिलता है वो है कि हम पवित्र आत्मा के साथ के काबिल होते हैं. मैं एक सरल कहानी बताना चाहती हूँ जिससे सभी चीजों में विश्वासकारी होना का मेरा वादा मजबूत हुआ है. एक शाम एक आदमी अपने पड़ोसी के खेत में मकई चुराने गया। वो अपने साथ अपने छोटे लड़के को ले गया निगरानी रखने के लिए, ताकि वो बता सके अगर कोई आ रहा है। वो आदमी घेरे पर ऊपर से खुद के अंदर गया और अपने हाथों में एक बड़ा बस्ता लिए और मकई तोड़ने से पहले आसपास देखा, पहले एक और फिर दूसरे और किसी को ना देखते हुए वो अपना बस्ता भरने वाला था। तब की लड़के ने पुकारा, पिताजी एक और तुमने अभी नहीं देखा है, तुमने ऊपर नहीं देखा। जब हम बेईमानी करने के लिए बहक जाते हैं और ये बेकावा सबको होता है, हम सोचेंगे किसी और को ना पता लगेगा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे स्वर्ग के पिता हमेशा जानता है और हमें आखिरी में उसे जवाब देना होगा। ये ज्ञान मुझे हमेशा इस वादा को अपनाने की याद दिलाती है, मैं विश्वासकारी होने में विश्वास करती हूँ। दूसरा सिद्धांत जो तेरा विश्वास के विषय में बतलाया गया है वो है, मैं सच्चा होने में विश्वास करता हूँ। शब्दकोश में सच्चा शब्द का अर्थ है अतल, वफादार, सही या बिना चुके रहना। मेरा एक मनपसंद ब्रिटेन में लिखा नामी किताब है जेन आयर, जो 1847 में शार्लोट ब्रोंटे द्वारा लिखा था। जो खास किरदार है जेन आया, वो एक गरीब युवा अनाथ है जो सच्चा होने के साथ सही अर्थ को बतलाती है। इस अवस्थातिक की कहानी में एक आदमी मिस्टर रोचेस्टर मिस आया से प्रेम करता है, मगर उससे शादी करने काबिल नहीं है, बल्कि वो मिस आया से निवेदन करता है कि वो शादी के बिना ही उसके साथ रहने लगे। मिस आयर भी मिस्टर रोचेस्टर से प्रेम करती है और एक चैन के लिए वो बहक जाती है, अपने आप से पूछने लगती, कौन इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करता है, ये किसके दुख पहुँचाएगा तुम्हारे निर्णय से। जल से जेन को एहसास होता है, मैं अपने आप की परवाह करती हूँ, मैं जितना अकेली बिना दोस्त के बिना सहारा के रहूंगी, मैं उतना अपने आप का आदर करूंगी, मैं परमेश्वर द्वारा दिया गया कानून का पालन करूंगी। कानून और सिद्धांत आज के लिए नहीं, अगर कोई बेकावा नहीं हो, वो इन जैसी चनों के लिए है। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए इसे तोड़ दूं, तब उनका महत्व क्या होगा। उनका एक महत्व है, ऐसा मैंने हमेशा विश्वास किया है, पहले से सोचा गया, जो मैंने ठान ली है करूंगी, उतना ही है मेरे पास मानने के लिए इस समय। पेकावे के एक नाजुक चन में जैन आया ने अपने विश्वास को कायम रखा। उसने परमेश्वर द्वारा दिया कानून पर भरोसा किया और बेकावे में वफादार रही। अपने विश्वास की और सच्चा रहने, जब ऐसा करना लोकप्रिय, आसान या मजेदार नहीं है, हमें सुरक्षित उस मार्ग पर रखता है जो स्वर्ग के पिता के साथ अनंत जीवन तक पहुंचाता है। मैं इस तस्वीर को पसंद करती हूँ जो एक जवान महिला द्वारा बनाया गया है, उसे स्वर्ग के पिता के साथ हमेशा रहने के अपने चाहत के आनंद को अनुभव करने की याद दिलाने के लिए। सच्चा होना हमें ये भी मौका देता है कि औरों के जीवन को अच्छा प्रभाव बनाए। मैंने हाल ही में एक प्रेरणा भरी कहानी सुनी, एक जवान महिला की जो अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहने के वादा के कारण एक अन्य जवान महिला के जीवन पर अच्छा प्रभाव थी। कई वर्ष पहले क्रिस्टी और जेन, जो एक हाई स्कूल की गीत गाने की कक्षा में थी टेक्सास में, कई वर्षों पर जेन ने क्रिस्टी को अपने दोस्तों से धर्म और उनके अन्य विश्वास के बारे में कहते सुना। हाल में फिर से क्रिस्टी से मिलने के बाद जेन ने ये कहानी बतलाई, मुझे दुखी हुई कि मैं तुम और तुम्हारे दोस्त को जो जानते थे के बारे में नहीं जानती थी, और इसलिए बड़ा दिन पर मैंने अपने माता पिता से एक धर्मशास्त्र मांगी। मुझे बाइबल प्राप्त हुई और मैंने प्रार्थना शुरू पढ़ना शुरू किया। इसमें मेरा धार्मिक सफर शुरू हुआ और सच्चे गिरजाघर की तलाश 12 वर्ष गुजर गए। एक रात मैं अपने घुटने पर गिरी और जानना चाहिए क्या करना चाहिए। उस रात मैंने तुम्हारे सपना देखा। क्रिस्टी, मैंने तुम्हें हमारे हाई स्कूल ग्रेजुएशन के समय से नहीं देखा था। मैंने सोचा मेरे सपना आश्चर्यजनक था, मगर मैंने उसका कोई महत्व नहीं सोचा। मैंने तुम्हारे अपने अगले 3 रातों तक देखे। मैंने कुछ समय बिताया अपने सपनों के अर्थ जानने के लिए। मुझे याद आया कि तू मोर्मन थी। मैंने मोर्मन वेबसाइट को देखा। सबसे पहले मुझे ज्ञान के शब्द देखे। 2 वर्ष पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था लंग के कैंसर के कारण। वो तंबाकू के सेवन करते वाली थी और ज्ञान के शब्द मेरे लिए बहुत अर्थपूर्ण था। बाद में मैं अपने पिता के घर गई। मैं उसके बैठक के कमरे में थी और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने पूछा कहाँ कौन और क्या करूँ। उसी क्षण में दूरदर्शन पर एक विज्ञापन आया गिरजाघर के बारे में। मैंने नंबर लिखा और उसी रात को फोन किया। प्रचारकों ने 3 दिन बाद पूछा कि क्या वो एक मोर्मन धर्मशास्त्र मेरे घर दे सकते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने 3.5 महीने बाद बपतिस्मा लिया। 2 वर्ष बाद मैंने अपने पति से गिरजाघर पर मिली। हमने डेलस मंदिर में शादी की। अब हम 2 सुंदर छोटे बच्चों के माता पिता है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती थी क्रिस्टी। तुमने इतना अच्छा उदाहरण दिया मुझे हाई स्कूल में। तुम दयालु और शुद्ध थी। प्रचारकों ने मुझे पाठ सिखाया और बपतिस्मा लेने का निमंत्रण दिया, मगर तुम मेरी तीसरी प्रचारक थी। तुमने अपने कर्मों से एक बीज बोया था और तुमने सच में मेरी जिंदगी बेहतर बनाई है। अब मेरे पास एक अनंत परिवार है। मेरे बच्चे पूर्ण सुसमाचार के ज्ञान के साथ बढ़ेंगे। ये सबसे महान आशीर्वाद है जो कोई दे सकता है। तुमने इसे मेरी जिंदगी में लाने के लिए सहायता की है। जब मैंने उससे संपर्क किया, क्रिस्टी ने कहा, कभी कभी हम तेरा विश्वास के बयान की गुनाह को सुनते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि जब हम इन आदर्शों को जिएंगे और मसीह के उदाहरण पर चलने की कोशिश करेंगे, हम प्रभाव डाल सकते हैं। मैं अल्मा 26 चैप्टर 3 में एमन की तरह महसूस करती हूँ जब उसने कहा, और यही वो आशीर्वाद है जो हमें प्राप्त हुआ है कि इस महान कार्य को करने के लिए परमेश्वर का हाथ में हम साधन बनाएंगे। ये मेरी प्रार्थना है कि हम सब सिर्फ दोहराएंगे नहीं, मैं विश्वासकारी और सच्चा होने में विश्वास करती हूँ, मगर कि तुम उस वादे को हर दिन जीने की निश्चय करोगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब तुम ऐसा करोगे, स्वर्ग पिता की शक्ति, प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारा समर्थन करेगा जब तुम वो कार्य करोगे जिसके लिए तुम्हें यहाँ भेजा था। मैं ये सब यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, आमीन। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक जरूरी पाठ सीखा एक लॉरल से जो मेरे वार्ड में युवा भाषण करता थी। मैं प्रभावित हुई जिस तरह वो यकीन से भाषण देती थी और यीशु मसीह की गवाही दे रही थी। उसने अपना भाषण इस बात से किया, जब मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का मुख्य भाग बना लेती हूँ, मेरे दिन अच्छा गुजरता है। मैं प्रिय योजना के साथ दया से पेश आती हूँ और मुझ में आनंद ही आनंद होता है। मैंने इस जवान महिला को कुछ दूर से पिछले कुछ महीनों से देखती आ रही हूँ। वो सबको चमकीले आंखों और हल्की मुस्कान से साथ स्वागत करती। 2 मैमेड ने मुझे बताया कि इस जवान महिला ने अपने फिल्म के टिकटों को त्याग दिया क्योंकि उसने जाना कि वो जो अनुभव करना जा रही है वो शुद्ध और प्यारी नहीं होगा।
shared how she maintains her happy, kind spirit.
जब इस जवान महिला ने गवाही दी, यीशु मसीह जो अपने जीवन का मुख्य भाग बनाती हूँ, मेरा जवाब मिल गया। हम विश्वास करते हैं सच्चे होने में विश्वासकारी, सती, पवित्रता, दूसरों के लिए अच्छाई करना, अच्छा जीवन बिताना और सभी मनुष्य के लिए अच्छाई करना। मसीह जैसा गुणियों का ये सुंदर, सच्ची, तेतिन विश्वास के विषय में पाया गया। मैं इन में से सिर्फ एक शब्द पर गौर करना चाहती हूँ, दयालु। दयालु एक सुंदर शब्द है जो हम बहुत नहीं सुनते हैं। वो लैटिन शब्द से लिया गया है और उसका मतलब है किसी के लिए अच्छा चाहना। मैं सबको दया दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यही सच है। तुम देखो, तब मैं खुद से कहूँगा, ये याद रखिए, दया मुझसे शुरू होती है। हमारे उद्धारकर्ता ने हमें दया की जीवन का बारे में सिखाया और वैसा ही जीवन जिया। यीशु ने सबसे प्रेम किया और उसने सबकी सेवा की। यीशु मसीह को अपने जीवन का मुख्य भाग बनाना हमें दया के इस गुण को पाने में मदद करेगा। अगर हमें ये सब मसीह जैसे गुणों को विकसित करना है, हमें उद्धारकर्ता के बारे में सीखना चाहिए। दयालु सैमर्टन के निकटता से हम सबको प्रेम करना सीखते हैं। जवाब, तो तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वकील ने फिर पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? वो वकील के लिए एक दिलचस्प सवाल था क्योंकि यहूदियों के पड़ोसी उत्तर के थे, जो सैमरियंस थे, जिन्हें वो इतना नफरत करते थे कि जब वो जेरूसलम से गलीली जाते, वो लंबा रास्ता जॉर्डन वैली की ओर से जाते ताकि उन्हें समारिया से ना गुजरना पड़े। यीशु ने वकील के सवाल का जवाब दिया दयालु सैमरियन का निकिता बताते से। निकिता के अनुसार, एक आदमी जेरूसलम से जेरिको के जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे आदमारा छोड़कर चले गए। मगर एक सैमरियन आदमी वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और वो उसके पास आया और उसके घाव पर तेल डाल और अंगूर का रस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सारी सवारी पर चढ़कर और उसे सराय में ले गया और उसकी सेवा की। और दूसरे दिन उसने 2 दिन की मजदूरी बराबर पैसे निकाल कर सराई के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा अच्छी तरह करना और जितना और पैसा तुम्हें इस पर लगाओगे, मैं लौटने पर तुम्हें भर दूंगा। ना कि उस जीविश पादरी और लीवाइट की तरह जो उस घायल आदमी के से गुजरे थे, जो उनके अपने देश का था। सैमरियन दयालु निकला उनमें अंतर के बजाय। उसने मसीह जैसा दया को गुण को दिखाया। यीशु ने हमें इस कथा द्वारा सिखलाया कि हर कोई हमारा पड़ोसी है। एक बिशपरी के एक सलाहकार ने हाल में एक अनुभव बतलाया जो हमें सिखाता है कितना महत्वपूर्ण एक पड़ोसी है। सामने सभा में देखते हुए उसने एक बच्चे को देखा जिसके पास एक बड़े बक्से में क्रेवेंस थे जिसके विनिम रंग थे। जब उसने अपने वोट के कई सदस्यों को देखा, उसने सोचा कि क्रेवन की तरह उनमें बहुत कम अंतर था, मगर हर एक व्यक्ति बहुत विचित्र भी था। एकता एक धार्मिक लक्षण है। वो एक परिवार का हिस्सा होना था, होने का मीठा एहसास है, शांति और इरादा था। वो दूसरों की सफलता चाहना है जितना तुम अपनी सफलता चाहते हो। वो ये जानना है कि कोई हमें चोट नहीं पहुंचाए चाहता, उसका मतलब है तुम कभी अकेले नहीं होगे। हम उस एकता को बनाते हैं और अपने विचित्र रंग दया, अपने दया के कार्य के साथ बनाते हैं। क्या तुमने कभी अकेलापन महसूस किया है? क्या तुमने उन्हें देखा है जो अकेले हैं, एक निराश या दुखी जीवन में जी रहे हैं? जवान महिलाओं, मैंने देखा है तुम अपने विचित्र रंग औरों की जीवन में अपने मुस्कान, दया के शब्द या प्रोत्साहन भरे लेख से लाते हो। प्रधान मोनसन ने हमें सिखलाया कैसे अपने उम्र के दोस्तों के साथ और उन सभी से जिनसे हम मिलते हैं के साथ रहे जब उसने गिरजाघर के जवान महिलाओं को बताया, मेरे बहुमूल्य जवान बहने, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हिम्मत रखने, अपने आसपास के लोगों को जान और निंदा करने से दूर रहने के लिए साथ में हिम्मत रखे कि सभी एकता और प्रेम और महत्वपूर्ण महसूस करें। मैं वादा करती हूँ अगर तुम वो करोगे जो आसान नहीं है, तुम अंदर से इतना अच्छा महसूस करोगी कि दया तुम्हारे दैनिक जीवन का एक भाग बन जाएगा। तुम देखोगे कि दयालुता तुम्हारे घर, कक्षा, वार्ड और पाठशाला में खुशी और एकता ला सकता है। याद रखिए, दया मुझसे शुरू होती है। हमारे उद्धारकर्ता ने सिर्फ सबसे प्रेम नहीं किया, पर उसने सभी सब की सेवा की। अपने अच्छाई को सब के सब में बांटो। बूढ़े और जवान तुम्हारे दया की सेवा से बहुत आशीष पाएंगे। प्रधान मोनसन जब से वो एक जवान पुरुष थे के मन में बहुत से लिए के में बड़ों के लिए खास जगह रही है। उसे एक छोटे मुलाकात, एक तैयार मुस्कान या एक चुगड़े हाथ के दबाव का महत्व पता है। दयालुता के ऐसे कार्य किसी के जीवन में रंग भर देता है जो कभी कभी लंबे अकेलापन के अंधेरे दिनों से घिरे रहते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि आप अपने आजा आजी और बुजुर्ग लोगों की परवाह करें। कल गिरजाघर में देखना कोई अपने से बड़े जो को जिसके तुम्हारे रंग की जरूरत हो अपने जीवन में। बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, उसे नाम से पुकारो, उससे थोड़ा बात करो, उन्हें सहायता देने के लिए उपलब्ध करो। कभी कभी दया दिखलाना दिखाता है सबसे कठिन होता है अपने ही परिवारों में। मजबूत परिवार बनाने के लिए कोशिश चाहिए। ताजगी देने वाला, सहायता देने वाला और औरों की परवाह करने वालों बनो। घर में कई मुसीबतें आते हैं क्योंकि परिवार सदस्य स्वार्थ और कठोरता से बोलते और पेश आते हैं। परिवार सदस्य की जरूरतों में दिलचस्पी लाओ। शांति लाने वाले बनो, ना कि चिढ़ाने, झगड़ने करने और लड़ाई करने वाले। याद रखिए, दया मुझसे शुरू होती है। यीशु ने बच्चों से प्रेम किया, उन्हें अपने बाहों में लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उद्धारकर्ता की तरह तुम दयालुता से सभी बच्चों को आशीर्वाद दे सकती हो, सिर्फ तुम्हारे घर के ही बच्चे नहीं। तुम शायद एक बच्चे पर अपने जीवन उदाहरण का असर नहीं जानोगे। हाल ही में मुझे एक पत्र मिला, एक दोस्त जो एक दिन के बच्चे के देखभाल सेंटर का ख्याल रखता है। जब मैं भवन में छोटे बच्चों के साथ चलती हूँ, इतना अच्छा लगता है देखना कि कितने लॉकर के दरवाजे के अंदर यीशु या मंदिरों के चित्र है। कुछ हफ्ते पहले एक बच्चे ने एक जवान महिला के खुले लॉकर के दरवाजे पर यीशु का चित्र देखा और कहा, देखो यीशु हमारे पाठशाला में है। उस चित्र के अनोखे में आंखों में आंसू आ गया और वो झुकी और उस बच्चे को गले लगाया। मैंने उस जवान महिला को धन्यवाद दिया उसके अच्छे उदाहरण के लिए। ये जानना कितना आनंद देता है, कितने सारे युवा हैं जो सच्चाई और धार्मिकता का समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जिससे कि उनके जीवन में आत्मिक आमंत्रित हो, जबकि आज के समय में कठिन होता है। मैं और सम्मानित नहीं हो सकती। जवान महिलाएं, तुम दुनिया को बदल रही हो। यीशु मसीह को अपने जीवन के खास भाग बनाकर और तुम वो बन रही हो जो वो चाहता है तुम बनो। तुम्हारे दया भरे जीवन के लिए धन्यवाद। उन्हें शामिल करने के लिए जो विचित्र है, तुम्हारे दोस्तों, बुजुर्ग परिवार और छोटे बच्चों के प्रति दया दिखाने के लिए, उनके लिए पड़ोसी बनने के लिए अकेले है और जिनके जीवन में चुनौतियों और दुख है, तुम्हारे दया के कारण तुम को उद्धारकर्ता की रोशनी और मुड़ते हो। मैं जानती हूँ कि प्रधान थॉमस एस मोनसन परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है जिसका जीवन दया का मूर्त है जिससे हम सीख सकते हैं। हमारे भविष्यवक्ता जैसा बनो, उसके उदाहरण और उसके शब्दों से सीखो। मैं जानता हूँ कि हमारे उद्धारकर्ता जीवित है और हम सब से प्रेम करता है। उसने अपना जीवन हम सब के लिए दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यीशु मसीह पर अपना जीवन केंद्रित करो और उसके मार्ग पर चलो, एक दूसरे से प्रेम करने और सेवा करने से। ऐसा करने से मैं जानती हूँ कि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएंगे, क्योंकि हम दयालु में विश्वास करते हैं। मैं ये बयान देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
I'm a young woman, and I believe.
I'm just one, but there are thousands of us.
Young women all around the world.
Trying our best to live up to our potential.
Some people may look at us and notice something different.
We are different because of what we believe.
And what do we believe? Ask any of us, and we'll tell you.
In the scriptures recently, I've come upon a verse that says, "Be not overcome by evil, but overcome evil with good." We don't need to be afraid or run from the world, that we can change it, that we can turn darkness into light.
After I'm done reading my scriptures or praying, things like that, I'll try and bring it into my life. And just by doing little things, it changes my whole day. And I can feel the Holy Ghost with me all day.
I'm a daughter of God. I'm a friend. I am a sister. And soon I'll be a mother. And I think that I can really stand out and make a difference.
I try to be a peacemaker in my home and to keep the spirit there, because I want our home to be as much as the temple as I can.
Power of the temple and for the peace we can feel there. I know that gathering to the temple, that attending the temple, thinking about the temple, help you center your life around Christ, which brings great strength and great power.
It helps you to come unto Christ, and it prepares you to be a mother. It prepares you for life after being a teenager.
I have a testimony of the love of Christ. I know that He loves me and that He is always there for me.
I know that Jesus Christ is my Savior and that He died for me. He is always reaching out for us, and we have to choose to reach up to Him.
He is never going to let us walk alone.
I am one young woman, but there are thousands like us
all over the world.
I believe in being
honest and true,
chaste,
benevolent,
virtuous.
I have promised to stand as a witness of God
at all times
and in all things
and in all places.
We seek after things that are
virtuous,
lovely,
of good report,
and praiseworthy.
And little by little,
step by step, we are changing the world.
My dear young friends, you are daughters of our Heavenly Father, who loves you. You are a chosen generation, Thank you for seeking to follow our Savior Jesus Christ. Thank you for believing. Thank you for the small and simple things you do daily to strengthen your testimonies and to help and serve others. You are the hope of Israel. You are a light on the hill. May your life ever reflect the truths found in the gospel of Jesus Christ, that you may be an influence for good throughout your sojourn here on earth. We love you.
I hope you will
आशा करती हूँ कि तुम सदा याद रखोगी जो तुमने आज रात सीखा और महसूस किया। अब मेरी बारी है तुमसे बातें करने की। मेरी तिपियनों की समाप्ति पर गायक मंडली गाएगी I know that my Redeemer lives। हैना कोप के साथ जो सोले कैनियन रिम स्टेक की माय मेड है हार्पर। कुछ ऐसे समय होते हैं जब हम अपने एहसास को बयान नहीं कर पाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आत्मा गवाही देगी तुम्हारे दिलों, तुम्हारी पवित्र पहचान और तुम्हारी अनंत जिम्मेदारियों की। तुम इज़राइल की आशा हो। तुम हमारे प्रिय स्वर्ग पिता के चुने हुए और सही पुत्रिया हो। पिछले महीने मुझे मौका मिला एक जवान महिला की मंदिर की शादी में भाग लेने का, जिसे मैंने उसके पैदाशी से जानती थी। जब मैं बांधने वाले कमरे में बैठी थी, मंदिर की रोशनी में सुंदर से झूमकर को चमकते देखते हुए मैंने उस दिन को याद किया जब मैंने उसे पहली बार उठाया था। उसकी माँ ने उसे छोटे सफेद ड्रेस में तैयार किया था। मैंने सोचा कि वह एक बहुत सुंदर शिशु थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा। फिर वो जवान महिला एक बार फिर सफेद ड्रेस में दरवाजे से अंदर आई। उसके चेहरे पर चमक और खुशी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुए, मैंने अपने दिल में इच्छा की कि हर जवान महिला उस समय को देख सके और हमेशा कोशिश करे पवित्र वादों के लायक बनने के और रहने के लिए और मंदिर के पवित्र वादों को हासिल करने के लिए।
सारे
पूर्वज को जो मुझसे पहले जिए थे, उसके बाद दंपति ने बड़े से आईने को उसके सामने वाले दीवार पर देखा और दुल्हन ने आंसू भरे आंखों से कहा, मैं सारे वंशों को देखती हूँ जो हमारे बाद आएंगे। उसने अपने आने वाले परिवार, अपने वंशज को देखा। मैं जानती हूँ कि उसने दोबारा ये जाना कि कितना जरूरी है साफ और शुद्ध रहने में विश्वास करना। वहाँ पर और कोई सुंदर दृष्टि नहीं सिवाय पूरे ढंग से तैयार दंपति को देखना जो मंदिर के उच्च स्थान पर घुटने पर साथ झुके हो। जवान महिलाओं के संग पिताई तुम्हारे कुछ साल तुम्हें मंदिर के लिए तैयार करेगा। वहाँ तुम्हें वो आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें ईश्वर की अनमोल पुत्री होने के लिए मिलना चाहिए। तुम्हारे स्वर्ग पिता तुमसे प्यार करता है और चाहता है कि तुम खुश रहो। जवान महिलाओं, ऐसी दुनिया में जहाँ नीति के दूषण बुराई को अनदेखा करना महिलाओं पर अच्छेतार और भूमिकाओं को बदलना बढ़ती जाती है, तुम्हें अपने आप, अपने परिवार और उन सारे लोगों को लिए जिनके साथ तुम मिलते जुलते हो की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। सद्गुण किया है और रक्षक किया है। सद्गुण एक सोचने की अंदाज है और चाल चलन जो ऊंची नैतिक स्तर पर उधारित है। इसमें सुधरता और सत्यवृत्ति शामिल है। और रक्षक क्या है? एक रक्षक वो है जो बचाता, धक्ता और समर्थन करता है। इस प्रकार सद्गुण के एक रक्षक की तरह तुम नैतिक सुधरता को बचाओगे, देखोगे और समर्थन करोगे, क्योंकि मरणशील जीव को बनाने की शक्ति पवित्र और अनंत शक्ति है और उसे अच्छी तरह से बचा कर रखना चाहिए जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। और जरूरी है उद्धारकर्ता के सामने लायक खड़ा रहने के लिए। तुम भी इसके लिए तैयारी कर रहे हो। पर्सनल प्रोग्रेस और फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ के स्टार बहुत जरूरी है। उन सिद्धांत में जीना जो इन किताबों में लिखा है तुम्हें शक्ति देगी और मदद करेगी। पिछले गर्मी में अल्पाइन यूटा से एक जवान महिलाओं के दल ने सोचा कि वो और ज्यादा लायक बनेगी राज्य के लिए। उन्होंने निश्चय किया कि वो मंदिर पर ही ध्यान धरेगी। ड्रेपा यूटा मंदिर से सोलेक मंदिर तक चलते समय पूरी 35 किलोमीटर के दूर थी, जैसे कि पूर्वज जॉन रे मोयल ने किया था। भाई मोयल के एक पत्थर का कारीगर था जिसे भविष्यवक्ता ब्रिगम यंग ने नियुक्ति किया था सोलेक मंदिर पर काम करने के लिए। उसके एक काम था पवित्र परमेश्वर के लिए लिखना सोलेक मंदिर के पूरब दिशा में। वो सरल नहीं था और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने लकड़ी का एक पैर बनाया और बहुत हफ्तों के बाद उसने फिर मंदिर के लिए 35 किलोमीटर की दूरी पर कहे हुए कार्य को करने चला। सीडर हिल्स 6 वोट की जवान महिलाओं ने उतनी ही दूर पर चलने के लिए सोच एक पूर्वज और उसके लिए जो उनके प्रेरणा था मंदिर जाने के लिए लायक बना रहने के लिए। वो हर हफ्ते म्यूचुअल में सीखती रही और जब वो चलती वो बातें करती मंदिर के बारे में क्या उन्होंने सीखा और महसूस किया। उन्होंने अपना मंदिर तक का चलना का सफर सुबह जल प्रार्थना से शुरू किया। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत किया मैं उनके यकीन पर खुश हुई। उन्होंने अच्छी तैयारी की थी और वो जानते थे कि वो तैयार है। उनकी आंखें में अपनी लक्ष्य पर थी। हर कदम जो उन्होंने बढ़ाया वो आप सब की याद में था जिसे तुम सब अभी तैयारी कर रहे हो मंदिर जाने के लिए। जब ये जवान महिला चलती रही वहां पर बढ़ाई थी मार्ग पर, मगर वो अपने लक्ष्य पर अटल रही। कुछ के पैरों में चाले निकल आए और कुछ के घुटने दुखने लगे, मगर वो चलती रही। तुम्हारे लिए भी वहाँ पर कई बाधाएं पैदाएं और रुकावट है मंदिर जाने के रास्ते में, मगर तुम भी निश्चित हो और आगे बढ़ते रहो। जो रास्ता उन जवान महिलाओं ने अपनाया था वो उनके नेताओं ने बनाया था, क्योंकि उन्होंने चला था और मोटर में गया था और सबसे सुरक्षित रास्ता चुना था इनके लिए। उन्होंने ख्याल रखा कि हर जवान महिला सेहतमंद रहे और उनके पास काफी पोषण रहे उनके शक्ति देने के लिए। उनके पुरोहित नेताओं द्वारा वहाँ उनके लिए स्थान थे जहाँ वो आराम कर सकते और पानी पी सके। जवान महिलाओं, तुम्हारे पिता और माता, तुम्हारे बिशप और कई अन्य लोग तुम्हारे रक्षक रहेंगे जब तुम मंदिर जाओगे। वो तुम्हारे लिए चेतावनी बोलेंगे और तुम्हें रास्ते दिखलाएंगे, और अगर तुम्हें चोट लग जाए या तुम रास्ता भूल जाओ वो तुम्हारी मदद करेंगे। मैं प्रसन्न थी कि उनके चलने के अंतिम भाग में उनके भाई और अन्य जवान पुरुष और दोस्त आए इन अटल जवान महिलाओं को हिम्मत दिलाने और उनकी प्रशंसा करना। एक भाई ने अपने बहन को उठा लिया जिसके पैरों में छाले निकले हुए थे और अपने कंधों पर उस मंदिर तक के आखिरी कुछ कदम पूरे किया। जब इन आश्चर्यजनक जवान महिलाओं ने अपने लक्ष्य को हासिल किया आंसू बहे निकल गए। जब हर एक ने मंदिर के दर्शन किया और अपने हाथों को पवित्र पत्थर पर रखा और अपने दिल में ठान लिया कि मंदिर जाने के लिए हमेशा लायक बनी रहेगी। जिस तरह से वो चलते हुए मंदिर गए थे जीवन के लिए एक लक्षण है। माता पिता और पुरोहित नेता रास्ता भर उन पर निगरानी रखने हुए थे। उन्होंने हिम्मत और सहायता प्रदान किया। जवान महिलाओं ने एक दूसरे का ख्याल रखा और हौसला दिया। जवान पुरुष उनके हिम्मत, वादा और जवान महिलाओं के शक्ति से प्रोत्साहित हुए। भाइयों ने अपने उन बहनों को उठाया जो घायल थे। मंदिर के उसी मार्ग पर टिके रहने के लिए तुम्हें अपने व्यक्तिगत सद्गुण की रक्षा करनी पड़ेगी और उन सद्गुण की जिनके साथ तुम मिलते जुलते हो। क्यों? मोर्मन ने मोर्मन की धर्मशास्त्र में कहा कि सद्गुण और सत्यता सबसे प्रिय और अमूल्य है सभी चीजों में से। तुम हर एक क्या कर सकते हो सद्गुण के रक्षक बनने के लिए। ये शुरू होता है विश्वास रखने से कि तुम कुछ बदल सकते हो। ये शुरू होता है वादे से। जब मैं एक जवान महिला थी, मैंने ये सीखा कि कुछ फैसले एक ही बार किया जाता है। मैं अपने उन कार्यों को चिट्ठी बनाया जिससे मैंने हमेशा करना चाहती थी और उन चीजों को जिन्हें मैं कभी नहीं करना चाहूंगी एक छोटे किताब में। सिर्फ एक घूंट नहीं तकलीफ देगा, मैं हंसी और कहा, मैंने 12 साल में ही सोच लिया था कि मैं वैसा नहीं करूंगी। आगे से ही निर्णय बना लेने से तुम्हें मदद मिलेगी सद्गुण के रक्षक बनाने में। मैं ये चाहती हूँ कि तुम सब एक सच्ची बनो जिसमें तुम लिखो ये जो तुम हमेशा करना चाहोगे। सद्गुण के रक्षक का ये मतलब है कि तुम हमेशा सिर्फ अपने कपड़ों में ही नहीं सुशील रहो, मगर अपने शब्दों, अपने चाल और अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी। सद्गुण के रक्षक होना का मतलब है कि तुम कभी गलत शब्द और तस्वीर को जवान पुरुषों के पास नहीं भेजोगे कि वो अपने आत्मा को पुरोहित के शक्ति को या सद्गुण को खो दे। इसका मतलब है कि तुम सत्यती रहो, महत्व को समझते हो, क्योंकि तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है और कि जन्म देने के पवित्र शक्ति के खेलना नहीं चाहिए शादी से पहले। तुम समझते हो कि तुम में एक पवित्र शक्ति है जिसमें शामिल है पवित्र जिम्मेदारी। तुम उसके रक्षक हो कुछ जो लाल मनियों से भी ज्यादा अलमोल है। विश्वासी बने रहो, आज्ञाकारी बने रहो। अभी तैयारी करो कि तुम प्रभु के पवित्र मंदिर के आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए सफल हो। उन माताओं के लिए जो आज रात को सुन रही है, तुम अपने पुत्रियों के विनम्रता और सद्गुण के सबसे जरूरी उदाहरण हो। धन्यवाद। कभी भी उन्हें ये बतलाने में हिचकिचाना नहीं कि वो ईश्वर की सही पुत्रियां हैं और उनका मान शारीरिक आकाशारण पर नहीं अधित है और उन्हें तुम्हारे विश्वास को सही ढंग से और लगातार उसी तरह से उसी रूप में देखने दे। तुम भी सद्गुण के रक्षक हो। इस हफ्ते मैंने फिर एंजन पार्क को चढ़ा। वो जल्द सुबह थी और जब मैंने पहाड़ से नीचे देखा प्रभु के घर के पहाड़ को सोलेक मंदिर फिर से साफ दिखाई दी। पुरजवों ने अपना सब कुछ त्याग दिया उस पहाड़ पर ऊपर पहुंचने के लिए ताकि हम मंदिर के आशीर्वादों को पा सके और अनंत जीवन के लिए परिवार के साथ बन सके। 40 साल के बलिदान और मेहनती कार्य के बाद और अल्पाइन से मंदिर तक चलने के बाद, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरह उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने एक भविष्यवक्ता में विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि उन्हें ईश्वर और उनके एकलौता पुत्र को देखा और बात किया। उन्होंने उद्धारकर्ता में विश्वास किया। उन्होंने मोमन की धर्मशास्त्र में विश्वास किया। इसलिए वो कह सके, हम सभी चीजों में विश्वास करते हैं, हम सभी चीजों की आशा रखते हैं, हम बहुत कुछ पा कर चुके हैं और आशा है कि सब कुछ पा कर सकेंगे। उन्होंने बहुत कुछ पार किया और हम भी कर सकते हैं। 13 वर्ष विश्वास के विषय में हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो वही चीजों है जो हमें मंदिर के अंदर जाने के लिए लायक बनाती है। जवान महिला, तुम एक महान कार्य में शामिल हो और तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपने आप को शुद्ध और साफ रखती हो, तुम्हें शक्ति मिलेगी। जब तुम वादों का पालन करोगी जिन्हें तुमने बनाया है, पवित्र आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन और रक्षा करेगा। तुम्हारे इर्द गिर्द फरिश्तों का दल रहेगा। प्रधान मोनसन ने हमें याद दिलाया है, याद रखो कि हम अकेले जिंदगी के सफर में नहीं दौड़ते हैं, हम प्रभु की मदद के हाथकार हो। उस दिन के लिए तैयार रहो जब तुम प्रभु के मंदिर में आने के लिए लायक हो सकते हो। सद्गुण की रक्षा की तरह तुम उद्धारकर्ता को उसके पवित्र घर में ढूंढने की कोशिश करोगे। मैं बयान देती हूँ कि ईश्वर जीवित है और उनका एकलौता पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह जीवित है और उनके असीम प्रेषित के मुक्ति देने वाली और कुछ करने की शक्ति के कारण तुम में से हर एक को रास्ता दिखलाया जाएगा और रक्षा मिलेगा तुम्हारे मंदिर जाने के मार्ग पर और फिर वापस उसके पास। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम सब शक्ति मिलेंगे उस समय जब तुम सबसे आश्चर्यकारी हो करोगे। उस सुंदर दिन के लिए जीवित रहो जिसके चर्चा रेवलेशन की पुस्तक में किया गया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
We will now hear from President Henry B.
Irons. अब हम प्रधान हेनरी बी आयरिंग से सुनेंगे जो प्रथम अधिवक्ता की पहली सलाहकार हैं. प्रधान आयरिंग के टिप्पणियों के बाद हम गायक मंडली अंतिम गीत गाएगी, हाउ फर्म अ फाउंडेशन. संगीत के बाद बेथनी रॉय द्वारा प्रार्थना किया जाएगा जो मेसा एरिजोना मारिकोपा नॉर्थ स्टेक के लॉरल है.
My beloved
young Bano, tum prabhu ke girje ki ujjwal umang ho. Mujhe aaj is baat ka tumhe vishwas dilana hai. Agar is vishwas ki gawahi tumhe ishwar dwara mile, tumhare chunavon par uska prabhav pad sakta hai. Aur phir jo tumhe chote chote chunav lagenge, वैसे चुनावों से उनके द्वारा तुम प्रभु तुम्हें सुख दिलाएगा. तुम्हारे चुनावों द्वारा वो अनगिनत औरों को आशीर्वाद दे पाएगा. हमारे साथ शामिल होने का चुनाव इसकी एक मिसाल है. 10 लाख से ज्यादा लोगों को निमंत्रण दिया गया था. कुछ और करने के अलावा तुमने आज यहाँ आना पसंद किया. ये तुमने तुम्हारे विश्वास के कारण किया. तुम्हें ईसा मसीह के सुसमाचार पर विश्वास है. इस यकीन से तुम उनके सेवकों का संदेश सुनने आए हो कि तुम कुछ न कुछ सुन या महसूस कर पाओगे जिससे जीवन बेहतर बनेगा. तुमने दिल में ईसा मसीह को सुख का मार्ग माना है. तुमने शायद इसे एक महत्वपूर्ण चुनाव नहीं माना होगा. तुमने शायद परिवार और दोस्तों के साथ रहना था. तुमने शायद किसी ने दिया निमंत्रण स्वीकार किया होगा. तुमने शायद ये नहीं सोचा होगा कि तुमने उद्धारकर्ता का ये निमंत्रण स्वीकार किया है कि आओ मेरे पीछा करो. साथ बिताए इस घंटे में प्रभु ने तुम्हारा विश्वास बढ़ाया है और तुम्हारी गवाही और मजबूत की है. तुमने सिर्फ शब्द और संगीत नहीं सुने, तुमने आत्मा की साक्षी महसूस की होगी कि उसके सच्चे गिरजे में आज भी पैगंबर जीवित है और सुख की राह उसके राज्य के भीतर है. तुम्हारी गवाही बड़ी है कि ये पृथ्वी पर का इकलौता जीवित और सच्चा गिरजा है. हम सभी ने वही बातें नहीं महसूस की. कुछ को गवाही मिली कि प्रधान मॉनसन ईश्वर के पैगंबर हैं. औरों को मिली सत्यनिष्ठा, नैतिकता या सभी से भलाई करने जैसे प्रभु के गुणों की. हम में उस जैसे बनने की इच्छा निर्माण हुई होगी. तुम सभी में ईसा मसीह के सुसमाचार की गवाही मजबूत करने की इच्छा है. प्रधान ब्रिगम यंग ने तुम्हारी इस अर्जी को भविष्यवक्ता के रूप में परखा 142 साल पहले. वो प्रिय पिता और जीवित पैगंबर था. उसने जगत का प्रभाव उसकी बेटियों पर आते देखा. उसने देखा कि जगत के प्रभाव उन्हें प्रभु की राह से जुदा कर रहे हैं. उसके समय वो प्रभाव कुछ हिस्से तक उस रेल मार्ग से आ रहा था जो एकांत और सुरक्षित संतों को दुनिया से मिला रही थी. उसने शायद इस समय की तकनीकी चमत्कार नहीं देखे होंगे जब एक छोटा यंत्र हाथ में पकड़ा हुआ उसके द्वारा हम दुनिया भर में संदेश भेज सकते हैं. हम दुनिया भर के अनगिनत लोगों से विचार से वाकिफ होते हैं. पर उसने अपनी बेटियों और तुम्हारे लिए उस शक्ति को पहचाना जो जीवित और प्रिय ईश्वर पर आधारित गवाही द्वारा किए चुनावों से आती है। उसकी पवित्र सलाह उसने बेटियों को तुम्हारे लिए सदा है, तुम्हारे लिए भी है। मेरे आज के संदेश की जड़ यही सलाह है। उसने एक मील से कम फासले पर दिया ये संदेश आज दुनिया भर के ईश्वर की बेटियों को जा रहा है। इस्राएल की जवान बेटियों को सच्चाई का जीवित गवाह पाना जरूरी है। फिर उसने युवा स्त्रियों की वो संस्था निर्माण की जिसे हम इस समय कहते हैं युवा औरतें। तुमने आज रात उस चुनाव का प्रशंसनीय प्रभाव महसूस किया जो एक रविवार शाम को उसके घर में हुआ। 100 साल से अधिक वक्त बाद इस्राएल की जवान बेटियां को सच्चाई की जीवित गवाह स्वयं पाने की आवजू है। अब और शेष जीवन में तुम्हें उस जीवित गवाह की जरूरत पड़ेगी तुम्हें शाश्वत जीवन की राह पर दृढ़ करने। उसके द्वारा तुम मसीह की रोशनी का प्रसार अपने दुनिया भर और युग युग के भाइयों और बहनों से कर पाओगे। तुम्हें गवाह क्या होती है इसका व्यक्तिगत अनुभव है। एल्डर जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने सिखाया कि गवाह एक ठोस ज्ञान है जो विनम्रता से सच्चाई खोजने वाले प्रेरणा द्वारा पाते हैं। उसने प्रेरणा देने वाली पवित्र आत्मा के बारे में कहा कि समझाने की शक्ति इतनी महान है कि मन में कोई संदेह नहीं बचता। इसी तरीके से इंसान जान पाता है कि ईसा ही मसीह है और उसका सुसमाचार सच्चा है। तुमने वो प्रेरणा खुद महसूस की है। आज मेरे जैसे तुम्हें शायद सुसमाचार के एक हिस्से की पुष्टि हुई होगी। ये विश्वास के 13वें छंद के शब्द ईमानदार सच्चे पवित्र और उदार होने के बारे में सुनने पर मुझे लगा कि वह प्रभु के गुण हैं और उन्होंने खुद कहे हैं क्योंकि जोसेफ स्मिथ उसका पैगंबर था। मेरे लिए वो सिर्फ शब्द नहीं है। मेरे मन में मैंने यहूदिया की धूल भरी सड़कें देखी और गेतसमनी का उद्यान। मेरे दिल में जोसेफ के अनुभव का एहसास हुआ जब वो पिता और बेटे के सामने उस उपवन में घुटनों पर था। मैं मन में वो दोपहर के सूरज से तोज रोशनी नहीं देख पाया पर मैंने उसी की तरह गवाह की गर्मी और अचरज महसूस किया। गवाह तुम अलग अलग हिस्सों में पाओगे जैसे ईसा मसीह की पूरी सच्चाई की पुष्टि होगी। मिसाल से मॉर्मन की किताब पढ़ते हुए कुछ पहले पढ़े छंद नए लगेंगे और मन में नए विचार लाएंगे। तुम्हारी गवाही चौड़ाई और गहराई में विकसित होगी जैसे पवित्र आत्मा द्वारा सच्चाई की पुष्टि होगी। जीवित गवाही बढ़ेगी शास्त्र की पढ़ाई प्रार्थना और चिंतन करने से। जीती गवाह पाने की सबसे बढ़िया विवरण मॉर्मन की किताब में आलमा के 32वें अध्याय में मिलता है। तुमने वो शायद कई बार पढ़ा होगा। पढ़ने पर मैं हर बार उसमें नई रोशनी पाता हूँ। चलो हम उसकी समीक्षा करें। वो प्रेरित अंश सिखाते हैं कि गवाह की खोज विश्वास के एक कण से और उसके विकास की आरज़ू से शुरू होती है। आज तुमने वो विश्वास और आरजू पाई है मसीह के बारे में उत्तेजक प्रवचन सुनने पर, उसकी आज्ञा और क्षतिपूर्ति ये हमारे लिए मुमकिन करते हैं। विश्वास का वो बीज तुम्हारे दिल में बोया हुआ है। तुमने शायद वो दिल का विस्तार भी महसूस किया होगा जो आत्मा ने वादा दिया था, पर उगते पौधे जैसे उसका पोषण करो ताकि वो मुरझा न जाए। अक्सर और हार्दिक प्रार्थना करने से उसका पोषण मिलेगा। मिली सच्चाई की आज्ञा पालने से गवाह जीवित रहेगी और मजबूत भी होगी। आज्ञा पालन पोषण का जरूरी हिस्सा है गवाह पाने के लिए। तुम्हें मसीह का वो वादा याद होगा, अगर कोई आदमी उसकी मर्जी पालेगा उसे सिद्धांत पता पड़ेगे वो ईश्वर के हैं या मेरे अपने। ये मेरे लिए चला है, तुम्हारे लिए भी चलेगा। मुझे जवान होते हुए सिखाया गया था कि सुसमाचार के सबसे बड़ा तोहफा शाश्वत जीवन है। मैंने सीखा कि शाश्वत जीवन परिवार संग सदा प्यार में रहना है। जब से मैंने वो सच्चाई सुनी और उनकी मेरे दिल में पुष्टि हुई, मैंने हर चुनाव करने में विवाद से बचना चाहा और परिवार में शांति बढ़ाने की कोशिश की है। इस जीवन के बाद ही मैं शाश्वत जीवन का बढ़िया उपहार पा सकता हूँ, पर जिंदगी की चुनौतियों के बीच मुझे अपना स्वर्गीय परिवार कैसा होगा इसकी झलक मिली है। उन अनुभवों द्वारा मंदिरों में जुड़ाने की शक्ति की गवाह बढ़कर और शक्तिशाली बनी है। मेरी दो बेटियों को मंदिर के में पुरखों के लिए बपतिस्मा लेते हुए देखकर मेरा दिल उनके पुरखों की तरफ खींचा गया। इलाया का वादा पूरा हुआ है। माता पिता और बच्चों का दिल एक दूसरों की ओर मुड़ा है। मोमन की किताब की वादे के अनुसार हमारा विश्वास पक्का ज्ञान बनाया जा सकता है। मैंने उस खुशी की झलक महसूस की जो मेरे पुरखों ने को मिली जब मसीहा आत्मा की दुनिया में गया था। उसका वर्णन हमें सिद्धांत और करारों की किताब में मिलता है। और संतों को खुशी हुई और उन्होंने घुटने टिकाते हुए मान लिया कि ईश्वर का बेटा उनका मुक्तिदाता है जिसने उन्हें नर्क की जंजीरों से मुक्त किया। उनका रब उज्जवल हुआ, प्रभु का तेज उन पर पड़ा और उन्होंने उसका नाम उसके नाम की प्रशंसा के गीत गाए। मेरी खुशी प्रभु की शाश्वत जीवन की वादे पर विश्वास रखकर कार्य करने से आई। मेरे उस चुनाव से मेरी गवाह और मजबूत हुए, वैसे ही जैसे मसीहा ने वादा किया था कि वो होगी। उसने सिखाया कि आज्ञाकारक होने के अलावा हमें उस गवाही के लिए अर्ज भी करना चाहिए। प्रभु ने हमें मोमन की किताब पढ़ने की आज्ञा दी है और उसके पैगंबर मोहिनी द्वारा कहा, देखो मैं तुम्हें आग्रह करता हूँ कि जब तुम उन बातों को पढ़ोगे, अगर वो प्रभु के विवेक में हो तो तुम याद रखोगे कि प्रभु इंसान के बच्चों की ओर कितना दयालु रहा है। आदम की उत्पत्ति से उस वक्त की तक जब तुम्हें ये चीजें मिले और तुमने इन बातों को हृदय में चिंतन करोगे और जब तुम ये चीजें पाओगे, मैं आग्रह करता हूँ कि तुम ईश्वर शाश्वत पिता से पूछो मसीह के नाम क्या ये बातें सच्ची नहीं हैं। और अगर वह सच्ची दिल से पूछोगे निष्ठा के साथ मसीह पर विश्वास रखते हुए, वो उस सच्चाई पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें प्रकट करेगा। और पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हम सभी बातों की सच्चाई जान पाएंगे। मेरी आशा है कि तुम सभी वो वादा आजमाया है या जल्द करोगे। जवाब शायद एक जोरदार आत्मिक अनुभव में नहीं आएगा, मेरे लिए पहले वो धीमे से आया, पर वो मजबूत होता है, जैसे मैं मोमन की किताब पढ़ के प्रार्थना पूर्वक पढ़ता हूँ। मैं पुराने अनुभवों पर निर्भर नहीं करता, मैं अपने मोमन की किताब की जीती जागती गवाह मोमन के वादे को बार बार आजमा के दृढ़ रखता हूँ। उस आशीर्वाद को लगातार हक नहीं मानता। गवाह की पोषण देने भक्ति भरी प्रार्थना लगती है। भगवान ने ग्रंथों में दिए संदेश के लिए भूख और मिली सच्चाई का आज्ञा पालन प्रार्थना में लापरवाही करने में खतरा है। लापरवाही से शास्त्र पढ़ने में हमारी साक्षी को धोखा है, वो हमारी गवाह के पोषण के लिए जरूरी है। आत्मा की चेतावनी याद करो। अगर तुम पेड़ का ख्याल नहीं रखोगे, उसे पोषण नहीं दोगे, उसे जड़ नहीं मिलेगी, धूप आकर उसे जलाएगी, जड़ न होने के कारण वो मुरझाएगा और फिर उसे नीच नोच कर फेंक देना पड़ेगा। अब ये इसलिए नहीं हुआ कि पेड़ बुरा था, ना ही इसलिए कि उसका फूल स्वादिष्ट नहीं था, पर तुम्हारी भूमि ही बंजर थी और तुमने उसे पोषण नहीं दिया, इसलिए उसका फल तुम्हें नहीं मिला। भगवान के लिखित संदेश पर भोज, हार्दिक प्रार्थना और प्रभु का आज्ञा पालन समान रूप से हर दिन करने से तुम्हारी साक्षी फूलेगी और फलेगी। हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारी शास्त्र पढ़ाई की मिसाल में रुकावट आती है। ऐसे मौके भी आते हैं जब हम प्रार्थना करना पसंद नहीं करते। कुछ आज्ञाएं हम थोड़े वक्त के लिए भूल सकते हैं, पर हमारी जीती जागती साक्षी की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी और आत्मा का ये वादा भी। इसलिए अगर तुम उसे पोषण नहीं दोगे भक्ति से उसके फल की अपेक्षा करते हुए, तो तुम जीवन के पेड़ का फल नहीं नोच चख पाओगे। पर अगर तुम संदेश को पोषण दोगे, हाँ पेड़ को पोषण दोगे, जैसे वह उग रहा है बड़े परिश्रम से सब्र से उस वक्त की राह देखते हुए जब उस पर फल आएंगे, उसे जड़ मिलेगी और वो पेड़ अनंत जीवन में फूलेगा और वो होगा तुम्हारे परिश्रम भक्ति और सब्र से जो तुमने वाणी को पोषण देने में दिया ताकि वो तुम्हें जड़ ले पाए। देखो उसके बाद तुम फल पाओगे जो बहुत मूल्यवान है, सभी मीठी चीज़ों से मीठा, सभी सफ़ेद चीज़ों से सफ़ेद, सभी शुद्ध चीज़ों से शुद्ध, और तुम उस फल का भोज करोगे जब तक इतना भर जाओगे कि तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, तब तुम्हें इनाम मिलेगा अपनी भक्ति और परिश्रम और सब्र का और सहनशीलता का जो तुमने जताई फल की अपेक्षा में। उन शास्त्रों में ये शब्द उस फल की प्रतीक्षा करते हुए ने इस शाम के विवेकी शिक्षण को प्रभावित किया है। इसलिए तुम्हें आज मंदिर के जुड़ाने वाले कमरे की ओर निर्देशित किया गया था, जहां एक दूसरे का सामना करने वाले दर्पण हैं जो रोशनी निरंतर प्रतिबिंबित करते हैं। वहां भगवान के मंदिर में तुम्हारी शादी हो सकती है। अगर तुम ऐसे दिन की कल्पना कर सकते हो उस पर्याप्त इच्छा से जो साक्षी से पैदा होती है, तुम्हें शक्ति मिलेगी दुनिया के बहकावे से बचने के लिए। जैसे तुम मसीह जैसा जीवन जियोगे, तुम्हारी साक्षी मजबूत होगी। वक्त गुजरते तुम जान जाओगे कि वो दुनिया की रोशनी है। तुम जिंदगी में रोशनी को बढ़ते महसूस करोगे। ये परिश्रम बगैर नहीं आएगी, पर वो साक्षी बनेगी अगर तुम उसे पोषण दोगे। सिद्धांत और करार में ये वादा दिया गया है। वो जो ईश्वर का है रोशनी है, और जो उसे पाएगा और ईश्वर में जारी रहेगा ज़्यादा रोशनी पाएगा। वो रोशनी और तेज होती जाएगी उस सिद्ध दिन तक। तुम दुनिया के लिए रोशनी बनोगे जैसे तुम वो साक्षी बांटोगे। हम दूसरों पर मसीह की रोशनी प्रतिबंधित करेंगे। प्रभु तरीके खोजेगा ताकि रोशनी तुम्हारे प्रिय जनों को छुए और ईश्वर अपनी बेटियों कि संयुक्त भक्ति और साक्षी द्वारा उसकी रोशनी से वो अपने राज्य के लाखों को और दुनिया भर को छोएगा। तुम्हारी साक्षी और चुनौतियों पर इस गिरजी की और तुम्हारी प्रभु की निमंत्रण सुनकर स्वीकार करने की मिसाल दोहराने वाली पीढ़ियां की आशा निर्भर है। प्रभु तुम्हें जानता है और प्यार करता है। मैं तुम्हें अपना प्यार और साक्षी देता हूँ कि तुम एक प्यारे और जीवित स्वर्गीय पिता की बेटियां हो। उसका बेटा ईसा हमारा मसीह है और दुनिया की रोशनी है। मैं साक्षी देता हूँ कि पवित्र आत्मा ने आज रात के संदेश दिलाए हैं तुम्हारे दिल में बसी सच्चाई की पुष्टि करने के लिए, कि प्रधान मॉनसन उनके पैगंबर भी हैं। ईसा मसीह के नाम में आमेन।
How
हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए और हमें इस मौका मिला कि हम अपने माँ के साथ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में आ सके। हम धन्यवाद देते हैं कि जितने मैसेजेस हम आज सीखे, हमें मदद कीजिए कि हमें याद आए कि जितना भी कठिनाई आए कि हम अपने मार्क ठीक रखें। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन।